तो अभी कई बार हमने सुबह भी बात की, लाइफ में चलते चलते कई चीजों में एथिकल डायलेमास आ जाता है कि इस क्रम में अगर मैं इस वैल्यू सिस्टम के साथ चलती हूं और अपना ये वैल्यू सिस्टम सस्टेन करती हूं तो मुझे चैलेंज को फेस करना पड़ता है। तो वो चैलेंजेस जो चेंज हमारी लाइफ में होते रहते हैं उसके चैलेंजेस को मैं कैसे फेस करूं, और ये सेशन हमारे बीच में रखने के लिए पहुंच रहे हैं हमारे बहुत सीनियर राज्यका फैकल्टी हैं, आदरणीय अनीता दीदी जी, आपसे परिचित करा देते हैं। अनीता दीदी जी, आप सीनियर राजयोगा फैकल्टी हैं प्लस सीनियर मैनेजमेंट ट्रेनर हैं, ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन की सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के कॉन्ट्रैक्ट में 1979 में आए और आपने अपने जीवन को कम्प्लीटली डेडिकेट किया आफ्टर कम्प्लीटिंग हर एजुकेशन। आपने बीए किया, बीएड किया एंड देन उसके बाद अपना जीवन समर्पित किया 1987 में। आप कई सारे तरह के मैनेजमेंट कोर्सेज एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और कई सारे इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आप कराते हैं, जिसमें से मुख्यतः रूप से लीडरशिप स्किल्स, स्ट्रेस फ्री लिविंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, आर्ट ऑफ राइट थिंकिंग, लिविंग वैल्यूज, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एटसेट्रा। वी वेलकम अनीता दीदी। थोड़ा जोरदार अच्छे से तालियां बजाइए, ये भी एक्यूप्रेशर है। आप कोर मेंबर हैं जो ब्रह्मा कुमारी बहने समर्पित होती हैं, तो समर्पित होने से पहले हमारी ट्रेनिंग होती है और हमारा ट्रायल पीरियड होता है। तो जो ट्रेनिंग है और ट्रायल पीरियड का जो समय होता है उसमें कैसे बहनों को इस जीवन को अडॉप्ट करना है, ये लाइफस्टाइल में कैसे आगे चलना है, तो हमारी ट्रेनिंग के आप कोर मेंबर हैं, कोर टीम मेंबर हैं। कई सारे टीवी चैनल्स पर आपके क्लासेस और सेशंस, मैनेजमेंट सेशंस भी आप सुनते होंगे। फैकल्टी हैं सोनीपत में, रिट्रीट सेंटर है वहां पर, जोनल कोऑर्डिनेटर हैं स्पार्क विंग के, और आप डायरेक्टर हैं चंडीगढ़ में हमारा जो ब्रह्मा कुमारीज का एक सेंटर है वहां पर, सेक्टर 15 में, सेक्टर 15 के सेंटर के आप डायरेक्टर भी हैं। सो आदरणीय दीदी हमारे साथ हैं। हम सभी इस सेशन की शुरुआत करते हैं विद 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस। ये 2 मिनट की साइलेंस में हम अपने इनर कोर वैल्यू सिस्टम को जाकर के इंटरनली चेक करेंगे और उस कोर वैल्यू सिस्टम में किस तरह से हमने अपने आप को चेंज करना है, और वो जो चेंज बार बार लाइफ में बाहर से भी आता है उसको अडॉप्ट करने के लिए मैंने इंटरनल सिस्टम में, कोर सिस्टम में क्या चेंजेस करने हैं, उसके लिए हम इस 2 मिनट की साइलेंस में विचार करेंगे और फिर उसके बाद हम सेशन का आरंभ करते हैं। ओम शांति।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो
शांति। सभी बोलो ओम शांति, ओम शांति। आप सब भगवान के घर में आए हैं, सो अपने घर में आए हैं। आप सब जरूरी बात है, यहाँ रिलैक्स फील कर रहे होंगे। यहाँ का वायुमंडल ऐसे वाइब्रेशन से चार्ज्ड है जो आने वाले की थकान उतरती है, क्योंकि ये परमात्मा अवतरण भूमि है। तो आप सबको भी अपने अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन स्थानों को जाकर के चार्ज करना है, इसलिए आप सबको यहाँ बुलाया है। और आज हमको विषय दिया है चैलेंजेस ऑफ चेंज। चारों तरफ दिन ब दिन वायुमंडल बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। इस फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारा स्ट्रेस रेडीमेड आता है। आप कुछ गलती करे या नहीं करे, बाहर से भी रेडीमेड स्ट्रेस आ रहा है। बहुत सारे चेंज करने की आवश्यकता होती है, लेकिन ज्यादातर हम लोग वो वाले चेंज दूसरों से एक्सपेक्ट किया करते हैं। बार बार लगता है ये और वो बदल जाए, मेरा पड़ोसी सुधर जाए, सरकार ठीक हो जाए, हमारे इंस्टीट्यूशन के हमारे कोलीग्स हमारे सीनियर्स बदल जाएं, हमारे बच्चे सुधर जाएं, मेरी वाइफ मेरा हस्बैंड सुधर जाए। चेंज 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 एक्सपेक्ट करते रहते हैं, लेकिन जब दूसरों से पूछा जाए तो वो अंगुली आपकी तरफ कर देते हैं कि आप बदल जाओ। हर एक को लगता है मैं ठीक, दूसरा गलत है, उसको ठीक होने की जरूरत है। एक बार क्या हुआ, एक शिप जा रहा था समुद्र में और उसके कैप्टन ने सडनली ऑब्जर्व किया, उसके रडार पर एक लाइट फ्लैश हुआ। तो कैप्टन को लगा कि सी में अपोजिट डायरेक्शन से शायद उसी लेन पर कोई शिप आ रहा। उसने अपना चेक किया तो उसको लगा मैं ठीक लेन पर चल रहा हूं। उसने एक मैसेज फ्लैश किया जो दूसरी तरफ पहुंचे। वो मैसेज था, आप जो भी हैं हमारी लेन पर हैं, इसलिए 25 डिग्री रास्ता बदल लीजिए। दूसरी तरफ से जवाब आया, नहीं सर, आप जो भी हैं हमारी लेन पर हैं, 25 डिग्री रास्ता आप बदलिए। इनको गुस्सा आ गया, ये कौन होता बोलने वाला कि आप रास्ता बदलिए, इनको लग रहा था मैं तो ठीक हूं। इन्होंने दूसरा मैसेज कन्वे किया, मैं कैप्टन बोल रहा हूं, रास्ता आपको बदलना पड़ेगा। दूसरी तरफ से मैसेज आया, सर मैं राम कुमार बोल रहा हूं, रास्ता फिर भी आपको ही बदलना पड़ेगा। ये कैप्टन उधर से नाम आया राम कुमार, कोई डेजिग्नेशन नहीं। तो इनको लगा इज ही राम कुमार मेरे को ऑर्डर करता है, रास्ता बदलो, कोई डेजिग्नेशन भी नहीं है, फोर्थ क्लास होगा। इनको और गुस्सा आ गया। कैप्टन ने तीसरा मैसेज डाला, हम बैटल शिप से बोल रहे हैं, रास्ता आपको बदलना पड़ेगा। हमारा लड़ाकू विमान है, हमारे पास फौज है, रास्ता आप बदल लो, नहीं तो। दूसरी तरफ से जवाब आया, सर हम लाइट हाउस से बोल रहे हैं, रास्ता फिर भी आपको बदलना पड़ेगा। लाइट हाउस मालूम है, समुद्र के अंदर एक फिक्स बिल्डिंग होती है जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए। बहुत बार अपने व्यवहारिक जीवन में भी हम उन सब बातों को चेंज करने का सारी उम्र जोर लगाते रहते हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। सिर्फ उस चेंज को एक्सेप्ट किया जा सकता है या उसके हिसाब से अपने आप को बदला जा सकता है। फिर भी हम जोर लगाते रहते हैं उसको बदलने का। एक भाई साहब आए हमारे पास, कहने लगे बहन जी बहुत परेशान। हुआ क्या? मेरी वाइफ इतनी खराब है, बात मत पूछ, 30 साल से उसको झेल रहा हूं। हुआ क्या? जरा अकल नहीं है उसको। छोटी सी बात ही आपको बताता हूं, 30 साल से उसको सिखा रहा हूं, जब खाना देती हो ना उससे पहले एक गिलास पानी दे दिया करो। और 30 साल में वो भोजन से पहले एक गिलास पानी देना नहीं सीखी। अब आप ही सोच लो बहन जी मेरी हालत कितनी खराब होगी। मैंने कहा भाई साहब मुझे ना आप में और आपकी वाइफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है। उनको और गुस्सा आ गया, कहां वो अनपढ़ गंवार, कहां मैं पढ़ा लिखा ऑफिसर और आप कह रहे हो कोई फर्क ही नहीं लग रहा। मैंने कहा देखो भाई जी 30 साल में अगर वो एक गिलास पानी देना नहीं सीखी तो आप एक गिलास पानी लेना भी तो नहीं सीखे हो ना। आपके हाथों पे कौन सी मेहंदी लगी थी? भगवान ने कौन सा आपको लिख के दिया था कि कभी अपना पानी मत भरना? कोई ऐसा आपको ऊपर से लिखा हुआ मिला था? अगर आप पहले ही दिन अपना पानी खुद भर के बैठ जाते, एक दिन की कहानी थी, स्विच ऑफ थॉट ओनली, अगले दिन से उसको आप ही शर्म आ जानी थी। कुछ चेंज आप करो, कुछ दूसरा करता। कहता नहीं अभी भी सोच रहा हूं 30 साल पहले जो दूसरा रिश्ता आया था ना। मैंने कही आपके साथ रही तो ये हो सकता दूसरी 30 दिन में भाग जाती, तो आपके पास क्या गारंटी है? इस तरह के अपने दिमाग के अंदर हमने कुछ ड्रॉ करके रखे हैं लिमिटेशन के दायरे, सेल्फ क्रिएटेड लिमिटेशंस, जिनको हम क्रॉस नहीं करने चाहते हैं, और दिनों दिन अपनी जिंदगी को और टफ बनाते जाते हैं। छोटे छोटे चेंज बड़ी बड़ी मुश्किलों को आसान कर देते हैं, और छोटी छोटी रिजिडिटीज बहुत छोटी छोटी बातों को मुसीबत बना देती हैं। सिर्फ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। जरूरी बात है, जमाना तेजी से बदल रहा है, पर क्यों नहीं उसी हिसाब से हम अपने चिंतन की धारा को बदल लें तो जीवन मुसीबत लगने के बजाय आसान लगने लगेगा। एक राजा बहुत उदास बैठा था। रानी ने पूछा, महाराज क्या हुआ है, क्यों उदास बैठे हो? राजा कहने लगा, रानी बहुत बुरी खबर सुनी है। बताइए तो हुआ क्या है? रानी बहुत बुरी खबर सुनी है, हुआ क्या? हम लोग युद्ध हार गए। रानी ने कहा, बस इससे भी एक और बड़ी बुरी खबर मैंने सुनी है। राजा हैरान, इससे बड़ी और बुरी खबर मुझे ना मालूम हो और तुमने सुनी है, वो क्या? एकदम हैरान हो गया राजा। रानी कहती है, मैंने सुना है हमारे देश का राजा हिम्मत हार गया है। युद्ध हारना क्या बड़ी बात है, युद्ध तो हारे और जीत जाएंगे, ट्राई ट्राई अगेन, पर अगर हमारे देश का राजा हिम्मत हार गया तो फिर उसकी कोई जीत दोबारा होने का चांस नहीं है। तो जीवन भी एक युद्ध का मैदान है, इस युद्ध के मैदान में भी रोज हम छोटी छोटी लड़ाइयां हारते रहते हैं, ये कहते हुए कि ये बात ऐसी है, तुम बदलो, तुम सुधरो, तुम सुधरो। सारी उम्र चेक कर लीजिए जरा, आप में से लगभग ऐसे बैठे होंगे सारे जो किसी न किसी संबंधी के साथ 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से रहते होंगे और फिर एक दूसरे के लिए समझते होंगे कि तुम इस बात में ठीक नहीं हो, सुधरो, बदलो। क्या रिजल्ट आता है जब एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं, तुम गुस्सा नहीं किया करो, तुम लेट नहीं आया करो, तुम ऐसे मत खाया करो, तुम ऐसे मत बोला करो, हमको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे करेक्शन देके, डांट के, टोक के कितनों को सुधारवाए अब तक, किसने कितने लोग बदल डाले। जिसने बहुतों को सुधार दिया ऐसे तुम सुधरो कह के, वो हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ उठ के, एक भी नहीं। एक दो भाई व्हाइट ड्रेस वाले खड़े हुए हैं, वो तो कुछ योग मेडिटेशन सिखा के पॉजिटिव स्टाइल से बदला, ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी से डांट के, रोक के, बोल के हम किसी को चेंज नहीं कर पाते हैं, उसके बजाय रिजिडिटी बढ़ती जाती है। इस तरह का चेंज डिमांड करने के बजाय अगर हम सिर्फ इस बात पर ध्यान रख लें कि मेरे भी बहुत सारे काम बाकी हैं, जितना परिवर्तन दूसरे के लिए जरूरी है उतना परिवर्तन मेरे लिए भी आवश्यक है, और मैं अपने उस जहां भी मेरा पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट, उस पर फोकस करके उसको चेंज करने का जोर लगाना शुरू कर दूं, सामने वाले को इंस्पिरेशन आती है, वो दूसरी बात में चेंज करना शुरू कर देता। एक बार एक बड़े सीनियर ऑफिसर मुंबई में एक साइकेट्रिस्ट के पास गए। क्यों गए? आईएएस ऑफिसर थे। वहां जाके कहने लगे कि 15 साल हुए मेरी शादी को, लेकिन मेरी मेरी वाइफ के साथ नहीं बनती है, हमारा एक बेटा भी है, हम लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं। लास्टली आपसे सजेशन लेने आया हूं कि आपके पास कोई रेमेडी हो तो बताओ, नहीं तो हम सोच चुके हैं अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, अब हम डाइवोर्स लेंगे ही। अब साइकेट्रिस्ट तो टाइम की फीस लेता, कहते मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, उस सारे क्वेश्चंस का कंक्लूजन निकला कि उनकी वाइफ भी आईएएस ऑफिसर थी और दोनों अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर, अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे, लेकिन एक प्रॉब्लम दोनों में थी और वो थी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दोनों को लगता था आई एम बेटर देन यू, और उनकी ये सिद्ध करने की लड़ाई इस नौबत तक पहुंच गई कि अब तलाक लेना पड़ेगा, दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। डॉक्टर साहब ने उनको कहा देखो आपका बेटा भी है, इस उम्र में तलाक लोगे बदनामी और होगी, बच्चे का जीवन और खराब होगा, मैं आपको एक उपाय बताता हूं, बहुत कामयाब है। आपने अपनी वाइफ को कभी अप्रिशिएट किया है क्या? अभी तो उसकी स्पेशलिटी भी बता रहे थे, जैसे ही पूछा आपने वाइफ को कभी अप्रिशिएट किया है, उनको फिर गुस्सा आ गया, क्यों करूं, ऐसी है वैसी है, ऐसी है वैसी है। उन्होंने कहा देखो मैं आपका डॉक्टर हूं, आप मेरे पेशेंट हो, आपको एक दवाई बताता हूं, 7 दिन अपनी वाइफ को हर बात में बिना फ्लैटरिंग के जेन्युइन रीजंस पर अप्रिशिएट करना। वो चिड़ से गए भाई साहब, कहते फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है, बहुत खराब है वो, कहते फिर भी आप आजमा के तो देखो ना, 7 दिन आपने डाइवोर्स लेने का सोच ही लिया, 7 दिन रुको, ये वाला तरीका अपनाओ। चला गया वो, 7 दिन बाद वो ऑफिसर साहब मुंह लटका के आ गए, डॉक्टर साहब कोई फायदा नहीं हुआ। कहते कहानी सुनाओ हुआ क्या? कहते देखो जिस दिन आपके पास से गया ना, थोड़ा मार्केट जाना था, बारिश आ रही थी, थोड़ा भीग गया, घर जाते तक बुखार आ गया, ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। कहते मेरी वाइफ की नेचर थी, नेचर है कि वो बीमार की बहुत सेवा करती है, उसने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली। कहते फिर क्या, जो आपने कहा था वो मेडिसिन ला रही है, कॉफी ला रही है, ये कर रही है, मैं हर बात में उसको बोलता था थैंक्स, आप बहुत अच्छा कर रही हो। कहते 3-4 दिन तक जब तक मैं बीमार था सुनती रही, 5वें दिन मैं ठीक हो गया, फिर किसी बात पर मैंने बोला थैंक्स आप इस बात में बहुत अच्छी हो, तो उसको इतना जोर से गुस्सा आया, बस करो ये चापलूसियां, आपकी बच्चों के साथ चलेंगी, मेरे साथ चलने वाली नहीं है। डॉक्टर साहब ने पूछा फिर आपने क्या किया? कहते क्या किया, बंद कर दिया, और क्या करता? डॉक्टर ने कहा नहीं, आप किसी को 15 साल भूखा रखो, अचानक खीर पूड़ी खिला दो तो हजम होगी क्या उसको? तो ये थोड़ा सा ओवरडोज हो गया, वरना तो उसको इसी चीज की जरूरत है। अब ये वाला काम 1 महीना और करो, और बिना रिटर्न एक्सपेक्ट किए जो भी रिएक्शन आए, पर ध्यान रखना जेन्युइन अप्रिसिएशन होनी चाहिए, जो जो वो सच में ठीक करती है, फ्लैटरिंग की कोई जरूरत नहीं है, पर जेन्युइन आपको करनी ही है। ओके, वो भाई साहब फिर मुंह लटका के चले गए। 1 महीने बाद दोनों आए, दोनों के हाथ में बड़ा सा बुके था, बढ़िया सा गिफ्ट था डॉक्टर साहब के लिए। अब दोनों ने फैसला कर लिया था कि हम तलाक नहीं लेंगे। किस चीज ने काम किया? अताली तो बजा। किस चीज ने काम किया? 3 मिनट साइलेंस। बैक स्ट्रेट करके अलर्ट बैठेंगे, परमात्मा का प्रकाश अंदर उतरता महसूस करेंगे।
आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश, आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज।
बात कर रहे थे कि अगर किसी से आप चेंज करवाने चाहते हो, पहले आपको अपने में चेंज लाना पड़ेगा। और वो चेंज का पॉजिटिव तरीका भी है कि किसी के भी अवगुण उसके सामने ना बोलो, उसके बजाय उसको एप्रिशिएट करो। एक चेंज लाने के लिए 10 बार कम से कम एप्रिशिएट करो, नहीं तो हम लोगों के अंदर इरिटेशन पैदा करते हैं, जिद पैदा करते हैं। जितना एक दूसरे को कहते रहते हैं तुम सुधरो, उतना वो जिद्दी हो जाते हैं। इसके बजाय आदत डाल लो कि हर मनुष्य कहीं ना कहीं अच्छा है, उसकी उस अच्छाई को एप्रिशिएट करो, उसका विश्वास जीतो। जब आप उनका विश्वास जीत लेंगे तो उनके दिल के अंदर भावना पैदा होगी कि वो आपके कहे को माने, वो आपको सुख दें। तो विश्वास जीतने का तरीका है अप्रिशिएट करना, एक राइट डायरेक्शन में चलो। चाहे आपने सिचुएशन बदलनी है, चाहे आपने इंडिविजुअल को चेंज करना है, पहले उसको कोसना छोड़ो, ब्लेम करना छोड़ो। जितना आप किसी सिचुएशन को ब्लेम करते जाते हैं, यू नेवर नो, आप अंदर से कमजोर होते जाते हैं, आपका ऑरा वीक होता जाता है। एक तो सिचुएशन टफ थी, दूसरा आपने ब्लेम किया, ब्लेम करते अपना ऑरा वीक किया, तो उसको सामना करने की शक्ति भी नष्ट होती चली गई। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं, उस प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन आपके अंदर होता है, वैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वैसी आपकी ऊर्जा काम करती है। कुछ समय पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि हमारा ब्रेन कैसे रेस्पॉन्ड करता है। एक बंदर को आम खिलाया गया, अब मंकी आम खा रहा खा रहा खा रहा, उसको मजा आ रहा, अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा। आम खिला के उसके ब्रेन को स्कैन किया गया, उसके ब्रेन में चेंजेस थे खुशी के कारण। जो नॉर्मल वाला ब्रेन था वो खुशी वाले चेंजेस उसमें दिखाई पड़े। दूसरे दिन जिसको पहले दिन आम खिलाया था उस बंदर को नहीं खिलाया, उसको बिठा दिया, उसके सामने एक दूसरे बंदर को बिठाकर उसको आम खिलाया। पहले वाला बंदर सिर्फ देख रहा है देख रहा है देख रहा है, वो खा रहा है वो देख रहा है। अब दोनों के ब्रेन की इमेज निकाली गई, सेम आ गई। एक ने खाया, एक ने खाते को देखा और मन से खाया, एक ने मुंह से खाया, एक ने मन से खाया, क्योंकि वो एक दिन पहले उसका स्वाद चख चुका है। और जो उसने मन से खाया, तो दोनों के ब्रेन की इमेज सेम आ गई। ऐसे ही कोई बुरा है, हम बुरे नहीं हैं, वैसा बुरा काम नहीं करते हैं, पर बुरे की बुराई को बार बार सोचते हैं। इतना गंदा आदमी इतना गलत कर रहा है, इसको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, क्या जमाना आ गया। अब बुरे की और आपकी ब्रेन की अगर इमेज निकालेंगे, एक जैसी आने वाली है। ऊपर अपने कर्मों का खाता बराबर लिखा जाने वाला है। बुरा करना और बुरे की बुराई सोचना, बराबर इम्प्रेशंस अपने ऊपर पड़ते हैं, और अंतर से जो शक्तियां नष्ट होती है वो बुरे की बुराई से डील करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक आदत डालो, नेवर ब्लेम अदर्स, नेवर ब्लेम द सिचुएशन, नहीं तो आपकी शक्तियां नष्ट होंगी, आप उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। अपने यहाँ राजयोग की लैंग्वेज में हम ये कहते हैं, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज। जब आप एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्टेंस लेवल जितना हाई होगा, उतना उस प्रॉब्लम को फेस करने की शक्ति और डिफरेंटली रेस्पॉन्ड करने की शक्ति बहुत अधिक होगी। आप क्रिएटिव हो जाएंगे, आप खुश नमय होकर के परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। सामने वाला बुरा और हम रो रहे हैं, रोए माना, कहते जिन रोया तिन खोया, किस्मत खराब कर दी। एक कहावत कहते हैं, रोते गए मरे की खबर ले आए। अरे खबर आई थी, आपका सो एंड सो बीमार है, आपने रोना शुरू कर दिया, हाय उसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, अरे बीमारी है, ठीक हो जाए। नहीं, अगर ठीक ना हुआ तो व्हाट आर यू डूइंग? कितना प्रेशराइज्ड नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं। हाय, उसको कुछ हो गया, बीमारी है बेचारा। नहीं, वो कह रहे थे हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे, दुनिया एडमिट होती रहती है, वापिस आती रहती है। नहीं, उसके बिना तो हम नहीं रह सकते। किसने कहा बिना? पर आप जो क्रिएट कर रहे हैं ना, कहते जो रोता जाता है मरे की खबर ही लाता है। सिद्धांत है प्रकृति का कि जिस सिचुएशन को जैसा रिस्पॉन्ड करोगे वो घटना घटने लग जाएगी, वैसे हालात हो जाएंगे। तो हम हालात का निर्माण करते हैं, इसलिए आदत डालनी चाहिए किसी के भी रोल को, किसी भी सिचुएशन को ब्लेम नहीं करो। खराब है, बुरा है, ओके, लेट अस प्लान कैसे ठीक करें। लेट अस प्लान, कसूर किसका है ये बाद में सोचा जाए, पहले कश्ती को डूबने से रोका जाए। दो तरह की पर्सनैलिटीज होती है संसार में, एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जब भी कोई सिचुएशन आती है ना, दे आर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम। ऐसा क्यों किया, किसने किया, ऐसा ना करते, वैसा कर लेते तो ये होता ही ना। दे आर थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, उधेड़े जा रहे हैं, 10 साल पहले, 20 साल पहले उसने ऐसा किया था, वैसा किया था, तब आज ये दिन देखना पड़ा। दूसरी तरह की पर्सनैलिटीज होती है पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। वो केवल यही सोचते, अच्छा स्कूटर से गिरा, टांग टूटी, ओहो उठाओ उठाओ जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, टांग जुड़वाओ, दैट्स ऑल। किसने मारा, क्यों गिरा, पहले उसको इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे। इतने में तो बंदे का राम नाम सत हो जाना है। तो हम किस में, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम या पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, किस कैटेगरी में अपने को रखते हैं हम? ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। समस्याएं आना कोई बुरी बात नहीं है, जीवन है ना। अपोजिशन फोर्स होगा, दुनिया युद्ध का मैदान है, समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समस्याओं से घबरा जाना, हिम्मत हार जाना, ये बिग फेलियर। संसार एक नाटक है। अपने यहां हम राजयोग की भाषा में कहते हैं, जब जब समस्या आए उसको समोसा बना दो, समस्या का समोसा बना दो। सिर्फ एटीट्यूड चेंज करो, अच्छा ये बात इतनी बड़ी, सोचो गेम है, गेम में भी क्या होता है, एक बैट पकड़ता है, दूसरा बॉल मारता है। बैट उठाना भी आसान नहीं होता, भारी होता, 8-10 किलो का होता होगा, और फिर बॉल मारने वाला भी इतनी बड़ी बॉल उठा के दौड़ता है, ठा मारता है। बैट पकड़ने वाला कुछ रोता है क्या, हाय हाय ये बॉल मारने आ गया? नहीं, कहता और जोर से मार, ला मैं मारता हूं। गेम हो गई, क्योंकि उसने आने वाली बॉल को माइंड नहीं किया। घर में माताएं बेलन पकड़ती हैं, बेलन पकड़ती, हाय हाय सारा दिन रोटी बनाती रहूं। नहीं, रोटी नहीं बना रहे हो, सिर्फ गेम कर रहे हो। एंजॉय एवरी अपोजिशन फोर्स, तो वो समोसा हो जाएगा, आनंद का कारण हो जाएगा। इसलिए चैलेंजेस को चैलेंज करना चाहिए, न कि माइंड करना चाहिए, और हमेशा खुद का चेंज ऑफर करना चाहिए। खुद चेंज करने के लिए तैयार रहना चाहिए, छोटे बड़े की भावनाओं को छोड़ करके, क्योंकि संसार जो नाटक है ना, इसको एंजॉय तभी कर सकेंगे, क्योंकि हर एक को अपना अपना एक रोल मिला हुआ है। आप दूसरे के रोल को करेक्ट करने की कोशिश नहीं करो, अपने डायलॉग ठीक बोलो, अपने को करेक्ट करो। कोई कोई एक बात को बहुत पकड़ के घूमते हैं, बेन जी आपको क्या बताएं, आजकल ना भलाई का जमाना नहीं है। आप कहते हो कोई बुरा करे उसके साथ भला करो, ये तो भले के साथ भी भले का जमाना नहीं है। हम कहते अच्छा, भलाई का जमाना नहीं है तो कर लो बुरा, देखो कितना कर सकते हो, करते जाओ, है ताकत। बुरा करने में भी तो बड़ा जोर लगता है ना, आसान तो नहीं है ना कि बुरा करते जाओ करते जाओ। कई लोग बहुत इस बात को पकड़ के घूमते हैं कहानियों में, भिंजी फलाने के साथ हमने इतना भला किया, उसके लिए खून पसीना लगाया, क्या क्या नहीं हमने उसके काम किए, पर जब हमारी बारी आई ना तो क्या हुआ, उसी ने अंगूठा दिखा दिया, उसी ने हमारा बुरा किया। तो इसलिए हमारा तो भलाई से विश्वास ही उठ गया है। अब हमारी बात सुनो, इस स्टेज से हम कहते हैं कि जमाना कल भी भलाई का था, आज भी भलाई का है, कल भी होगा, बशर्ते, शर्त है उसके पीछे एक, कि आपकी जो भलाई है ना, आपकी जो गुडनेस है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और डीप अंडरस्टैंडिंग वाली होनी चाहिए। अगर आपकी गुडनेस है पर कमजोर है तो पिट जाएगी। वीर भोग्या वसुंधरा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपकी गुडनेस फिट होनी चाहिए। कैसे फिट होनी चाहिए, उदाहरण देती हूँ एक, जो ये बोलते हैं ना जी, हमने उसका भला किया, जब हमारी बारी आई तो वो मुकर गया, उसने तो और ही उल्टा पुल्टा कर दिया, उन्होंने ही हमारे साथ बुरा किया जिनका हमने भला किया था। ऐसी कहानियां आप लोगों के पास है, किस किस के पास ऐसा वाला एक्सपीरियंस है कि जिसका मैंने भला किया उसने मेरा बुरा किया, हाथ खड़े करो जिनके पास ऐसे एक्सपीरियंस है। देखो देखो कितने, धीरे धीरे सब हाथ उठा रहे, सबके पास ये एक्सपीरियंस है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते, ओके मानते हैं कि जिसका आपने भला किया वो वापिस आपके काम नहीं आया, और ही कई मौके ऐसे आ गए कि उन्होंने आपका बुरा कर दिया, परंतु जो काम आपका अटका था, जिस काम में वो लोग काम नहीं आए जिनका आपने भला किया था, वो काम अभी तक भी अटके पड़े हैं या हो गए हैं? जवाब दो, सारे इकट्ठे भूल रहे हैं, हो गए हैं, सभी भूल रहे हैं, हो गए हैं। कहते हैं ये तो भला हो ऊपर वाले का, उसने फलाने को भेज दिया और वो काम बन गया, नहीं तो उसने तो बिल्कुल ही मेरा हाल खराब कर देना था। तो भला हो ऊपर वाले का, ऊपर वाले ने फलाने को भेज के आपका काम क्यों कराया, क्या पड़ी थी ऊपर वाले को? क्योंकि आपने पहले कुछ भला किया था, उसका फल मिलना था, परंतु आपकी सुई कहां अटकी थी कि जिसका भला मैंने किया वही वापिस मेरा करे। पर यहां कर्म के लॉज कुछ और है। कर्म सिद्धांत एक नेशनलाइज्ड बैंक की तरह से चलता है। वो कैसे चलता है? नेशनलाइज्ड बैंक में समझो आपने 1,00,000 रुपया जमा कराया चंडीगढ़ के बैंक में, आप चले गए वहां से मुंबई, वहां आपको जरूरत पड़ी 50,000 रुपया, क्या आप प्राप्त कर सकते हैं? जमा कराया था चंडीगढ़ में, कोई ऐसा सिस्टम है कि मुंबई में जाके आप 50,000 रुपया ले सको? है सिस्टम? है, जानते हो ना, सब एजुकेटर्स बैठे हैं, सब जानते हैं सिस्टम्स हैं, एटीएम से, चेक से, दिस दैट, आप ले सकते हो। समझो आप मुंबई के बैंक में गए, चेक दिया 50,000 और आपको मिल गया 50,000, आपका काम हो गया, वापिस आए चंडीगढ़, उसी बैंक में गए फिर से, और जिसको आपने पकड़ाया था ना कैश और पासबुक ली थी, आज आप उसको कहते हैं भाई मेरा 1,00,000 रुपया वापिस कर। वो कहता है ठीक है। उसने कंप्यूटर देखा, भाई साहब आपने 1,00,000 में से 50,000 निकलवा लिया है, अभी 50,000 बाकी है। आप गुस्सा करो, अरे भाई वो तो भला हो मुंबई वाले का, मुझे जरूरत थी उसने दे दिया, पर मैंने तो तुझे 1,00,000 दिया था, वापिस कर मेरा, मिलेगा? आप उस पे केस कर दो, मिलेगा? कुछ भी कर दो, जितने मर्जी गाने गा लो, आपको 1,00,000 मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ से मिल गया था। ऐसे ही आपने किसी का भला किया, पिछले जन्मों में आप उसका बुरा कर चुके थे, भला करके कर्ज चुकाया और किसी दूसरे से पिछले जन्म में आपने भला किया हुआ था, भला लौट के आना था, वो आया। पुराने जमाने में बचपन में हम एक गीत सुना करते थे, सुना होगा आप लोगों ने भी, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की तुम सुनो और तुम्हारी, गरीब नहीं सुनेगा वो सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे किसको? गरीब को, वो 10,00,000 देगा। ऐसे नहीं कि आप रोज एक भिखारी को 1 रुपया दो, टक 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 30वें दिन जाके बोलो ला मेरे 30 रुपए, मिलेंगे आपको भिखारी से? मिलेंगे? किसको मिले हैं कभी? बोलो हमने मांगे ही नहीं, वो तो हम पुण्य कर रहे थे। अरे एक भिखारी को 1-1 रुपया देकर पुण्य कर रहे थे, तो क्या अपनों के साथ जो कोऑपरेशन कर रहे हो, जो उनके काम आ रहे हो, वो पुण्य नहीं हुआ? वापिस लेना पुण्य होता है कि पाप होता है? अगर भिखारी से 30वें दिन आप 30 रुपया ले लो, तो इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। क्यों, अपना दिया हुआ ले रहे हो, कहां रॉन्ग हुआ? अपना दिया हुआ ले रहे हो ना, परंतु उसके पास देने की कैपेसिटी नहीं है, वो 1 रुपया भी उसके लिए बहुत कम था, मुश्किल रोटी खाया होगा, इसलिए उससे वापिस लेना रॉन्ग है। तो कोई विजिबल बेगर्स हैं इस दुनिया में और कोई इनविजिबल बेगर्स हैं इस दुनिया में। इनविजिबल बेगर्स आपसे प्यार लेते हैं, आपसे सहयोग लेते हैं, कभी धन का, कभी तन का, कभी मन का, कभी आपकी शक्तियां लेते हैं, परंतु उनके पास आपको लौटाने की ताकत नहीं है। तो माइंड नहीं करो ना, ये सारी दुनिया माइंड नहीं करना, रॉयल बेगर्स की हो गई है। एक रियल बेगर होता है, एक रॉयल बेगर होता है। रियल बेगर कहता है माई दो पैसा दे दे रोटी खाऊंगा, ये रियल बेगर है, कटोरा लेके मांग रहा है। रॉयल बेगर क्या कहता है, मुझे टाइम दो, मुझे केयर दो, मेरी बात मानो, मुझे प्यार दो, मुझे सहयोग दो। फिर हम क्या कहते हैं उनको, पहले तुम दो तो हम दें, मेरे पास ही नहीं है, तुमने कौन सा टाइम दिया, तुम कौन सी मेरी बात मानते हो जो मैं मानूं, तुमने कौन सा सच्चा प्यार दिया जो मैं दूं। तुम सुनो, आजकल सबको एक दूसरे से शिकायत है। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं बहुत, वो कहते हैं जी पेरेंट्स हमारी नहीं सुनते हैं, पेरेंट्स को बुलाओ, कहते बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं। दोनों के कान चेक कराओ, हियरिंग प्रॉब्लम थोड़े ही है। फिर हमारी नहीं सुनते हैं क्या होता है, क्या खराब है, एक्सेप्टेंस लेवल खराब है। एक दूसरे को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चेंज कर देना चाहते हैं। तुम सुधरो, तुम बदलो, सगे बच्चों की भी नहीं सुनते हैं, उनको भी टॉन्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं बार बार। अब ये आदतें बदलनी होंगी। एक सेल्फलेस डोनर बनो, नेकी कर दरिया में डाल, भला करो भूल जाओ, क्योंकि तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। इस हिसाब से सारा संसार गरीब है। दान केवल पैसे का नहीं होता, दुआओं का भी होता है, दान प्यार का भी होता है, दान टाइम का भी होता है, दान खुशी का भी होता है, दान शांति का भी होता है। कौन सा दान बड़ा है इन सब के आगे, तो पैसे के दान की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत लोग आपस में कहते मिलते हैं, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, ले जाओ अपने गिफ्ट, मुझे तुम्हारा सच्चा प्यार चाहिए, कहते हैं कि नहीं एक दूसरे को। बहुत हमारे पास आके रोते हैं, दीदी भगवान का दिया सब कुछ पर शांति नहीं है, है कि नहीं। तो दुनिया शांति मांग रही है, सहयोग मांग रही है, जो खुद ऐसे अंदर से टूटे हुए कमजोर है, उनको हम अगर ब्लेम करने जाएं कि तुम खराब, तुम खराब, तुम ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, पहले ही टूटे हुए थे, जख्मी थे, उनके अपने अंदर शांति नहीं, शक्ति नहीं। मैंने कहा मानो तुम गलत हो, उनको और चोट लगती है और जिद्दी हो जाते हैं, सुधरने की ताकत नहीं है मनुष्य में। तो हमें दुआओं का सहयोग देना है। सबसे पावरफुल डोनेशन है डोनेशन ऑफ ब्लेसिंग्स, डोनेशन ऑफ गुड विशेस। किसी को कुछ न दे सको, दिल से दो दुआएं दे दो, पहुंचेंगी, काम करेंगी। बुरे से बुरे व्यक्ति के लिए दिल में सोचना शुरू कर दो, एक महीना तेरा भला हो जाए, तुम सुखी रहो, स्वस्थ रहो, तेरे बच्चे जीते रहें, तुम धनवान हो जाओ। बुरे से बुरे व्यक्ति को दे दो दुआएं, खुले दिल से, एक महीने में रिजल्ट आ जाएगा, महीने में रिजल्ट आ जाएगा। हम क्या करते हैं, किसी ने एक बुरा किया, वो एक ही किया था, एक बार ही गाली दिया था, हम 1,00,000 बार सोचते हैं, फिर कहते हैं हाय हाय पता नहीं क्यों वो फलाना मेरा ही दुश्मन है। अरे दुश्मनी के मैसेज तो यहां से हमने भेजे थे। ये वाले पहुंचते हैं तीर सबसे ज्यादा तीखे तीर होते हैं जो यहां से निकलते हैं। जो मेंटल वॉर है वो सबसे खतरनाक वॉर है। रामायण आप लोगों ने देखी होगी, महाभारत के दृश्य अगर देखे होंगे उसमें जो योद्धा युद्ध करते हैं, हर एक योद्धा जब अपना अस्त्र उठाता है, शस्त्र उठाता है, बाण उठाता है, क्या करता है? ऐसे बाण चढ़ाया उसमें, फिर क्या करता है? फिर मुंह में कुछ पड़ रहा है, वो 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 वो। फिर तीर मारता, देखा हुआ है? उधर वाला योद्धा भी बड़बड़ 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 कुछ करता है, फिर तीर मारता है। हमेशा जो पॉजिटिव योद्धा है नेगेटिव वाले के तीर को काट देता है, उसके शस्त्र को काट देता है। ये कौन सा मिरेकुलस वार होता है? इससे हमने समझ लिया है देवताएं या भगवान जो होते हैं ना वो मैजिशियन होते हैं शायद, वो छू मंतरी किया करते हैं। मैजिशियन होते हैं पर रियलिटी वाले होते, ऐसे वाले छू मंतर वाले नहीं होते है। वो बुरा व्यक्ति जो है ना उसको मन से दुआओं के तीर मारते हैं, जिससे उसकी बद दुआओं के तीर मर जाते हैं। सुना कैसे किसको चेंज करना है? जो बुरा है भलाई से उसकी बुराई को मारा जा सकता है। एक बार महात्मा बुद्ध जी एक गांव में गए और एक गली से क्रॉस करने लगे, सब रोकने लगे गांव के लोग, महात्मा जी उधर मत जाइए मत जाइए, एक पागल हाथी है अंदर, उस गली में जो जाता है उसको मार डालता है। महात्मा जी ने नहीं सुना उनका, चलते गए, लोग रोकते गए वो चलते गए, गली में घुस गए और दूसरी तरफ से बाहर निकल आए। लोगों की भीड़ लग गई, अरे महात्मा जी आप सकुशल वापिस आ गए, हाथी ने आपको कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, आपने क्या किया जो हाथी ने आपको कुछ नहीं किया? महात्मा जी मुस्कुराते रहे, कहते मैंने कुछ नहीं किया इसलिए हाथी ने भी कुछ नहीं किया, मैंने उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचा और हाथी ने भी मेरे ऊपर वार नहीं किया। हम पहले ही सोचने लगते हैं फलाना आएगा ना बहुत तंग करेगा, ऐसा बोलेगा फिर हम क्या करेंगे, पहले ही उसकी उल्टी सारी कैसेट हम बोलने लगते हैं, वो चाहे बोले या ना बोले। उसने तो हो सकता है कुछ और प्लान किया हो। हम बहुत छोटे थे ना, घर से बाहर निकलते कभी गली में जाते डरते थे कि स्ट्रीट डॉग होगा काट लेगा। हमारी मम्मी हमको सिखाती थी कि जब गली में डॉगी हो ना तो ये जो थंब है अंगूठा है इसको ऐसे करना फिर डॉगी के पास से भी चली जाओगी ना वो काटेगा नहीं। हमने कहा ओके, ऐसे किया गली से बाहर निकले डॉगी के पास से भी चले गए, डॉगी ने कुछ नहीं कहा, काटा तो क्या भौं-भौं भी नहीं किया, क्या जादू था इसमें? ऐसे चले जाओ तो काटता है, ऐसे जाओ तो नहीं काटता है, आप लोग भी आजमा के देखना क्या जादू है इसमें। हाँ क्या जादू है, हम तो बच्चे थे, मम्मी ने जादू सिखा दिया और वो जादू कामयाब हो गया। इसमें 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 कुछ नहीं रखा है। जैसे ऐसे किया ना, अब माइंड ने बोला अब तुझे डॉगी नहीं काटेगा। और मैं क्या सोचती गई, अब ये डॉगी नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, और वो नहीं काटेगा। उसको मैसेज पहुंच गया इसको नहीं काटना। और अगर मैं सोचती हुई जाती आए काटेगा, आए काटेगा, तो जो डरता है सो बोलो, जो डरता है सो मरता है। तो हमारी सोच का ही रिस्पॉन्स सामने से आता है, क्योंकि थॉट से ऑरा बनता है, और वो ऑरा बड़ी जबरदस्त चीज होती है। वो ऑरा हमारे से कई किलोमीटर आगे चल करके हमारा रास्ता बनाता है। एक तो थॉट से ऑरा बनता है, दूसरा जो हमारे संग्रहित कर्म होते हैं बहुत टाइम से इकट्ठे किए संचित कर्म, वो भी हमारे ऑरा का निर्माण करते हैं। तो ये कर्म कहाँ लिखे जाते हैं? कर्म किया मैंने बंद कमरे में, कोई गुनाह कर दिया, मेरा ऑरा क्यों खराब हो गया? कहते कर्म तो ऊपर विश्वकर्मा लिखते हैं, उनको कैसे पता चल गया? और फिर विश्वकर्मा ने लिखा, ठीक लिखा कि गड़बड़ लिख दिया? कई कई लोग भगवान के पास भी री इवेल्युएशन का क्वेश्चन डालते हैं ना, आप सबके पास भी आता है ना एग्जाम के बाद री इवेल्युएशन, भाई हम आपके रिजल्ट से जो मार्क्स दिए हैं हम सेटिस्फाइड नहीं है, री इवेल्युएट करो। तो ऊपर भी जा सकते हैं क्वेश्चन, री इवेल्युएट करो। तो विश्वकर्मा को कितना स्ट्रेस हो जाएगा? आप में से भी बहुत हैं जिन्होंने कई बार बोला होगा, हे भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, इतना दुख मुझे ही देना था। बोला हुआ सबने री इवेल्युएशन? बताओ भगवान जी मैंने कौन से गुनाह किए, ऐसे कौन से खोटे कर्म किए, मैंने तो कभी मक्खी नहीं मारी और ये मेरे साथ क्या हो रहा है? री इवेल्युएशन। इसलिए भगवान जी ने इस सारे स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत समझदारी से एक विश्वकर्मा हर एक के अंदर प्राइवेट बिठा दिया है। तेरा तुम जान, कहते तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। आपके मन जैसा आपका गवाह और कोई होना नहीं है। कैसे? आप सबसे ज्यादा जानते हो आप क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, और हर कर्म कैसे आत्मा के अंदर रजिस्टर होता है। तीन शक्तियां आत्मा के अंदर, वो आपने समझी होंगी, लेसन हुआ ना फर्स्ट लेसन आत्मा वाला, मन बुद्धि संस्कार। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है उन विचारों को जज कर देना, डिसाइड करना, और कर्म में जाने को अलाउ करना विचारों को। और तीसरी शक्ति है संस्कार, ये विश्वकर्मा है। संस्कार क्या करते हैं? एक फाइल ओपन करते हैं जिसमें आप जो करो अच्छा बुरा, जो सोचो अच्छा बुरा, टक 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 अंदर रिकॉर्ड होते जाना है और छपते जाना है। कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कहां छपता है? आत्मा पर ही जाकर छपता है, और छप करके सर्कमस्टांसेस के रूप में बाहर आता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक कैमरा है, आजकल तो मोबाइल्स में कैमरा है, अब कैमरा क्लिक करता है, जैसे ही क्लिक होता है सामने वाले का जैसा पोज है वैसा उसके अंदर आ जाता है। समझो आपके सामने कोई कैमरा लेके खड़ा है, क्लिक करने से पहले आपको बोलता है स्माइल प्लीज। आपने ध्यान नहीं दिया, आजकल सबके पास मोबाइल में कैमरा ही कैमरा। आप रो रहे थे, आपके बाल वाल खराब थे, आपके कपड़े खराब थे, आपका मुंह टेढ़ा सा था, गंदा सा, और सामने वाले ने क्लिक कर दिया और वो जो गंदी सी फोटो थी ना वो इतनी बड़ी करा दी और आपके घर के मेन स्थान पर लगा दी। आते जाते सब देखो, आपको कैसा लगा? बहुत खराब लगेगा। अब फोटो खींचने वाले को बोलोगे, अरे ये क्या इतनी गंदी फोटो खींची है मेरी। जैसे हम भगवान को बोलते हैं ना, हे भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, इतना दुख मुझे ही देना था, बोलते हैं ना इतनी गंदी फोटो। वो कहता है मैंने बोला था ना स्माइल प्लीज, आप नहीं हंसे ना, अच्छा अब इस फोटो को हंसाओ। फोटो खींचने वाला कहता है इम्पॉसिबल, ये रोती फोटो नहीं हंस सकती। अच्छा एक ऑप्शन है, आपको हंसती फोटो चाहिए, आप हंसो। मैं दोबारा क्लिक करता हूं, हंसोगे तो हंसती फोटो आ जाएगी, रोगे तो रोती फोटो आ जाएगी। आजकल के एआई की बात अलग है, नकली जमाना अलग चीज है, लेकिन सत्यता ये है, आप हंसोगे हंसती फोटो आएगी, आप रोओगे रोती फोटो आएगी। ऐसे ही जो हम कर्म करते हैं, गलती करने से पहले अंदर बुद्धि आवाज देती है नहीं करो, हर झूठ से पहले अंदर से आवाज आती है सच बोलो, हर क्रोध से पहले अंदर से आवाज आती है शांति और प्यार से बात करो, हर शराबी के शराब के गिलास को हाथ लगाते ही अंदर से आवाज आती है नहीं पियो, चोरी करने समय हर चोर को अंदर से आवाज आती है मत करो। तो ये फोटोग्राफर बोल रहा होता है स्माइल प्लीज, हमने नहीं माना, झूठ 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 बोलते 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 आत्मा की रिकॉर्डिंग हो गई वो गंदी फोटो। लोग बोलने लगे झूठा है झूठी है, हम झूठ चाहे 100 बार बोलें पर कोई मुझे झूठा ना बोले, अगर बोला तो हम इतने दुखी हो जाएंगे जो बात मत पूछो, हम कितना क्रोध करे कोई मुझे गुस्से वाली ना बोले, कोई मुझे शराबी ना बोले चाहे शराब पियूं, है कि नहीं ऐसा, फिर भी हम महान कहलाना चाहते हैं। ओके नो प्रॉब्लम, जो गलतियां की थी जैसी तस्वीर बन गई, तस्वीर पहले अंदर बनती है, नेगेटिव बनता है फिर पॉजिटिव आता है, कर्म ने किया क्लिक 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 क्लिक। अब आत्मा क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, एक प्रकाश, वो प्रकाश प्रभावित हो गया, प्रकाश मैला हो गया, मैले प्रकाश ने सब अंगों में प्रवेश किया उनको जिंदा करने के लिए, अंग बीमार हो गए क्योंकि यहाँ नेगेटिव लाइट आ रही है, उसमें झूठ पाप तेरा मेरा नेगेटिव थिंकिंग ये सब डाला हुआ है, स्ट्रेस इच्छाएं लस्ट अटैचमेंट ये डाला हुआ है, सब अंगों में चला गया, कहीं हार्ट इफेक्ट हो गया, कहीं किडनी इफेक्ट हो गई, कहीं लेग्स इफेक्ट हो गई। अब ऑरा बाहर निकलता है, ऑरा जाता है सामने वाले की तरफ, वो थप्पड़ मार के चला जाता है, अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, नहीं तूने नहीं बिगाड़ा, तेरे ऑरा ने बिगाड़ा। ऑरा ऐसा निकलता है, मैं ठीक गाड़ी चला रहा हूं टक्कर हो गई, पर अंदर अच्छा अच्छा रिकॉर्ड किया हुआ है, सच सच प्यार प्यार एकदम शांति शांति, दूसरे को सहयोग देना, दुआएं देना, रिकॉर्ड किया हुआ और अच्छा बना, टक्कर होते होते बच गई और ने बचा लिया। तो विश्वकर्मा अंदर बैठा है, इसलिए कहा जाता है कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, आएगा ही आएगा। लेकिन यहां भगवान के घर में आए हो तो आज आपको एक चाबी पकड़ा देते हैं, एक लेखनी पकड़ा देते हैं, भगवान के दर पर आए हो ना, जिससे कर्म का लेख बदला जा सकता। कैसे? आयरन कट्स आयरन, डायमंड कट्स डायमंड। आपको जो काटना है वही चीज लानी पड़ेगी। ऐसे ही हमारी जो भी परिस्थितियां हैं, सरकमस्टांसेस हैं, बिगड़े हैं कर्म से, सुधरेंगे कर्म से। अगर पाप चढ़ गया और खराब हो गया तो पुण्य पाप को काट सकता है, नो अदर ऑप्शन। जैसे पहले रिकॉर्ड प्लेयर्स होते थे, कैसेट होती थी, उसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम होता था, कैसे कैसेट रिकॉर्ड होती थी, उसमें एक सिंगल बटन होता था जिसके ऊपर लिखा होता था रिकॉर्ड, वो बटन दबाओ, कैसेट की पहले वाली आवाज डिलीट, नए वाले रिकॉर्ड, नई वाली भी ठीक नहीं भरी गई फिर से रिकॉर्ड बटन दबाओ, पहले वाली डिलीट, नई वाली रिकॉर्ड। होता है ऐसे? किस किस ने रिकॉर्ड प्लेयर देखे हुए हैं, रिकॉर्ड भी किया हुआ है बहुत, थोड़ा सा आजकल की उम्र वालों के नहीं देखा होगा। तो ये लाइफ भी ऐसे ही है, हमारे से गलतियां हो गई, दुख दिए गए, क्रोध किया गया, किसी का हक छीना गया, किसी के दिल तोड़े गए। अब कमर कस लो, अब उसको फुल स्टॉप लगाओ। जितनों को दुख दिया विद इंटरेस्ट सुख लौटा दो उनका, वो आएंगे दुख ले ले करके, उनको मल्टीप्लाइड सुख दे दो। बुरा करने वाले का भला करो, कहते हैं ना कर भला होगा भला, अंत भले का भला। हाँ ओके, कर भला होगा भला, पर किसका करूं भला, जिसने मेरा किया भला? नो, जिसने तेरा किया बुरा उसका कर भला, तेरे सारे पाप कट जाएंगे। निंदा करे कोई तुम्हारी, अप्रिशिएट करो। दुख देवे कोई सुख दो, कोई नफरत लेके आए प्यार दो, कोई आपके लिए दुर्भावनाएं लेकर आए उसको शुभ भावनाएं दे दो, दुआएं दे दो। दिस इज द ओनली ऑप्शन। किस बात का? अपने किए को मिटाने का। कहते ना कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, लोग कहते भगवान भी नहीं मिटा सकता। हाँ कर्म मिटा सकता है। भगवान का रोल क्या है? भगवान श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देता है। अब मैं क्या करूं, लोग दुख देते हैं और बहन जी कहती है सुख दो तो दुख मिटे, मैं सुखी ही नहीं हूं, दूं कहां से? आप कहते हो तेरा कर्ज तब उतरे जब तुम पैसा लौटाओ, कर्ज है लाख रुपया, मेरी कमाई है 1000 रुपया, कहां से चुकाऊं? तो कमाई बढ़ानी होगी ना, तभी तो कर्ज चुकेंगे। ये कर्मों के कर्ज हैं, चुकाने के लिए भगवान बाहें खोल के हमारा आह्वान करता है, मेरे मीठे लाडले बच्चों आओ, मैं हूं सुख का सागर, सुख मुझसे लो, दुनिया वालों को दो अनकंडीशनल। दुख भी देवे पर आपके पास सुख मल्टीप्लाइड हो गया, क्योंकि आपने किसके पास जाना है लेने? सुख के सागर के पास, ओशन ऑफ हैप्पीनेस। वो कहता है मेरे पास आओ, मैं हूं प्यार का सागर। लोगों ने आपके दिल तोड़े ना, अपने प्यार दिया उन्होंने धोखा दिया। आओ मेरे बच्चे मेरे पास, मैं प्यार से तुम्हारी झोलियां भरता हूं। तुम नफरत देने वालों को भी प्यार लौटा सकते हो, इतने प्यार में अमीर हो जाओगे, इतने अंदर से आनंदित हो जाओ प्रभु प्यार में, जो जहां जहां दुनिया निराशा उदासी थकान लाए उस आनंद से उनको भी भर दो। आज हम क्यों खुश हैं? हम भी तो इसी दुनिया में रहते हैं, क्यों खुश हैं? क्योंकि हमने ये वाली कलम पकड़ी है। कौन सी कलम? जो करे बुरा उसका कर भला, तेरा पाप मिट जाएगा। आप लोग कहेंगे ऐसे तो लोग सिर पे चढ़ जाएंगे, अगर हम ऐसे उनको माफ करने लगे तो। यूं तो चोर के आगे दरवाजे खुले छोड़ दो, माल ले जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर आत्मा बेसिकली प्योर है, उसको गुडनेस रिसीव होती है और गुडनेस का रिजल्ट आता है। अगर बुरे का बुरा करना ही सॉल्यूशन होता तो अब तक सारा संसार स्वर्ग बन गया होता। हम बुरे का बुरा तो सदियों से करते चले आ रहे हैं, सदियों पहले से ये कहावत सुनते आ रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दो। अच्छा, दे दिया ईंट का जवाब जिसने दिया पत्थर से, पत्थर खा के सामने वाला क्या लाएगा? पत्थर का जवाब गन से देगा ना, गन की गोली खा के गन का जवाब बॉम्ब से देंगे ना, बॉम्ब से चोट खा के बॉम्ब का जवाब एटम बॉम्ब से, मिसाइल से, उसका जवाब वर्ल्ड वॉर से, और वर्ल्ड वॉर का जवाब सर्वनाश। ये किया है हमने टिट फॉर टैट से, बदले लेकर के। ये तो वो वाली इक्वेशन हो गई, कर बुरा हाँ, सामने वाला करे बुरा तू भी कर बुरा तेरा होगा भला। नेवर, इक्वेशन वही लगानी होगी, कर भला होगा भला। इसलिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। आप जो एजुकेटर्स आए हो यहाँ, आप एक एक के साथ सैकड़ों हजारों जुड़े हुए हैं, आप देश के निर्माता हो, देश के कोमल पौधे भगवान ने आपके हाथों में दिए हैं, उनको वैल्यूज से सींचो, ऐसा सींचो जो वो सशक्त हो, ऐसे कमजोर नहीं जो पिज्जा बर्गर जितने ही रह जाएं, ऐसे स्टूडेंट्स तैयार मत करो जिनको सिर्फ व्हाइट कलर जॉब चाहिए, एसी ऑफिस एसी गाड़ी, चार साइन करूं लाखों कमाऊं, बाकी अपने को कुछ लेना देना नहीं है। उनको मरना सिखाओ, देश की खातिर वैल्यूज की खातिर सहन करना सिखाओ। सहन करेंगे शहनशाह बनेंगे, नहीं तो हमारी अगली जनरेशन नाजुक होती जा रही है। बिना किए सब कुछ चाहिए, वर्क फ्रॉम होम चाहिए, अब स्टडी फ्रॉम होम चाहिए, चलना भी ना पड़े, किया कराया मिल जाए, नहीं तो हम भगवान को दोष देंगे। तो अब वैल्यूज की जरूरत है, वैल्यूज को कर्मों में ऐड करो तो वो कर्म सारे पापों को धो देंगे। उसके लिए खुद रोल मॉडल्स बनो, खुद रोल मॉडल बनो। टीचिंग आपका प्रोफेशन नहीं है, लेकिन टीचिंग आपका एक कर्तव्य है, एक बहुत बड़ा पॉइस जॉब है आप समाज के निर्माता हो। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि मेरे घर में मेरी जॉब से क्या लाभ हो गया, नहीं, आप गुरुजन हो, मेरे से कितनों का जीवन जग गया, टीचर्स डे आया, कितने सैल्यूट्स मिले टीचर्स को, हम लोग भी राजयोगा टीचर कहलाते हैं, लेकिन हमने तपने की कसम खाई है, खुद तपेंगे, मरेंगे, मिटेंगे, समाज को प्रकाश देंगे, खुद सहन करेंगे, हमारे जैसी 40,000 समर्पित नौजवान बहनें जिन्होंने संसार के सुखों का त्याग किया है, जीवन को वैल्यूज पर तपाया है, उस प्यार के सागर से, परमात्मा से अपार प्यार, सुख, शांति, आनंद पाया है और अब इस बात पर कमर कसे बैठे हैं कि जो दुख लेकर आएगा हम सुख देंगे, जो नफरत लेकर आएगा हम प्यार देंगे, जो हमारा विरोधी होकर आएगा हम सहयोग देंगे और हम जमाने की चाल बदलेंगे तो युग बदलेगा। कहते हैं भारत को स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग आसमान से नहीं उतरता है, स्वर्ग के लिए मरना पड़ता है, मरे हुए को बोलते हैं ना स्वर्गवासी हुआ, तो आप न मरिए स्वर्ग न जाइए, तो इस प्रकार के मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, माइंड नहीं करना चाहिए, अपनी नेगेटिविटीज मार डालें और अपने अंदर का देवत्व जगा दें तो यही धरती हमारे लिए स्वर्ग बनने वाली है। आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सदा सुखी रहो, औरों को सुख बांटते रहो। ओम शांति। 2-3 मिनट एकाग्र होते हैं मन को शांत करते हुए, मस्तक में दिव्य ज्योति बिंदु सितारा महसूस करते हुए एक महान संकल्प करेंगे, मैं जगती अमर ज्योति, मैं गुणों का प्रकाश हूँ, मुझ ज्योति में समाया अपार सुख, अपार शांति, परम प्यार पूरे विश्व में बांटने के लिए मिला है। ये प्रभु सौगात है, मैं परम पिता की संतान हूँ, मेरे परम पिता परम ज्योति स्वरूप निराकार शिव दूर लालास्मान ब्रह्मलोक से मुझे देखते हैं, उनका परम प्रकाश गहन प्यार से भरा हुआ, सुख और आनंद से भरा मुझ पर बरस रहा है। भगवान मुझे बहुत प्यार करता है, अपने अपार प्यार की किरणों से मुझे भर रहा है, मुझे भरते जाना है, बांटते जाना है।